ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं दीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंद अध्याय 10 जलभरत तथा महाराज राहुगण की वार्ता। आज इस अध्याय के 4 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ श्लोक। न वयं नर देव प्रमत्ता भवन नियमानु प्रथा साध्वेव बहाम अयम अधुनैव नियुक्त अपि न द्रुतं व्रजामि नानेन सह बोढुम इह वयं पारयम इति। इस गद्य फॉर्म है, यानी फिर इसको पढ़ सकते पद्य के रूप में। न वयं नर देव प्रमत्ता भवत्रिय मानुपथा साध्येव बहाम अयम अधुनैव नियुक्त अपि न द्रुतं व्रजामि व्रजति नानेन सह वढुम इह अयं पारयाम इति। शब्दार्थ न नहीं, वयम हम सब, नरदेव हे मनुष्य में ईश्वर तुल्य, राजा को देव अर्थात से भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रमत्ता कार्य के प्रति असावधान, भवत नियम अनुपथा सदैव आपकी आज्ञाकारी है, साधु ठीक से एव निश्चय ही, बहाम ले जा रहे हैं, अयम यह मनुष्य, अधुना अभिनया एव निसंदेह नियुक्त लगाया गया, अपि यद्यपि न नहीं, द्रितम शीघ्रता से, ब्रजति चलता है काम करता है, न नहीं अनेन इसके सह साथ, बोढ़ुम ठोने में, उह अहो वयम हम सभी, पारयाम समर्थ है इति। इस प्रकार अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे स्वामी, कृपया ध्यान दे कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम इस पालकी को आपकी इच्छानुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल में ही काम में लगाया गया है, तेजी से नहीं चल पा रहा है, अतः हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ है। तात्पर्य, पालकी के अन्य वाहक शूद्र थे, जबकि जड़ भरत ने केवल उच्चकुलीन ब्राह्मण थे, वरन परम भक्त भी थे। शूद्र को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं करता। अतः जब भी शूद्र एवं ब्राह्मण व वैष्णव की एक साथ मिलाया जाता है तो कर्तव्य पालन में असंतुलन अवश्य आता है। शूद्र धरती पर चल रही चिटियां की परवाह किए बिना पानी के ले जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शूद्रों के समान व्यवहार नहीं कर सकते थे, इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई। ओम अज्ञानाति मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न वयं नर देव प्रमत्ता भवत्यमानुपथा साध्वैव वहाम अयम अधुनैव निजुक्तोपि न धृतं व्रजति न अनेन सह बोढुम इह वयं परयाम इति। हे स्वामी कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम इस पालकी को अपनी इच्छा अनुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है तेजी से नहीं चल रहा था बात नहीं चल रहा, अतः हम उसके साथ पाली के ले जाने में असमर्थ है। ये कौन बोल रहे इस बात को? कहार लोक ने है। कहार किसको कहते हैं? जो पाली के ढोने वाले हैं। ये किसकी पाली के ढो रहे थे? महाराज राहुगण। ये कहां के राजा थे और कहां जा रहे थे? सिंधु और सोबीर के राजा थे। सिंधु प्रदेश कहाँ जानते हैं? कहाँ पर? सिंधु प्रदेश पाकिस्तान में है। सिंधु नदी जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, सात पुण्य नदी में से हमारे जो पवित्र नदियों में से एक है क्या सिंधु नदी, ये विशेष रूप में कहाँ बहती है, पाकिस्तान के अंदर में, लेकिन ठीक है, लेकिन ये सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी के किनारे वो जो प्रदेश जो पाकिस्तान के रूप में जाने, पश्चिम पाकिस्तान, अभी तो एक ही पाकिस्तान है, पहले दो था, अभी पूर्व पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश है। तो इसलिए सिंधु और सौवीर वो राज्य के ये सम्राट, ये राजा थे महाराज राहुगण। लेकिन इनको ज्ञान की आहरण करने की प्रबल इच्छा थी, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का इच्छा था, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है, अथ तो तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जन्म में है तो तत्व की जिज्ञासा करना, आत्म तत्व की जिज्ञासा करना ये धर्म है मनुष्य का। इसलिए वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को सीखने के लिए इन्होंने अपने राज्य सिंधु या सोवीर से छोड़कर कहाँ जा रहे थे, कपिल मुनि के आश्रम कहाँ पर है, गंगा सागर, जहाँ पर गंगा कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, मिल जाती है, और कोई नदी है जो समुद्र में मिलता है, कहा था उसके नाम कहा जाता है, तो उसके साथ समुद्र के नाम उच्चारण होता है नहीं है, कोई कहता कि कावेरी सागर, जमुना सागर, अन्य भी नदी सब है, सिंधु सागर ऐसा कहते नहीं, ये क्यों कहते गंगा सागर, कि गंगा समुद्र में मिलने पर भी समुद्र में नहीं मिलता है, और समुद्र को क्रॉस करके भी कहाँ चले जाता है, पाताल लोक में, तीन त्रिपथगामी नहीं गंगा, स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल में भी बहती है, इसलिए तो गंगा की स्रोत में ही भासते हुए भीम चला गया था, कहाँ बीस लड्डू खिला के फेंक दिए थे ना गंगा में इसको, पांडव ने क्या कौरव लोक ने दुर्योधन आदि, तो गंगा में फेंक दिए थे, और गंगा के स्रोत में भासते भासते कहाँ पहुंच गए थे, नागलोक में चले गए नीचे है। तो इसलिए गंगा सागर है, तो कहाँ सोवीर और कहा एक माने भारतवर्ष की एक प्रांत से, वो उत्तर प्रांत से आकर दक्षिण प्रांत में जा रहे थे, पूरे पूर्व दक्षिण प्रांत जहाँ पर गंगा मिलती है समुद्र में है, वहां पर कपिल मुनि के आश्रम आज भी है, तो कपिल मुनि से शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन ऐसे ही भ्रमण करते करते उन्होंने रास्ता में इनके जो ठीक है बीच के स्थान पर है आर्यवर्त जिसको कहते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पहुंचे हैं, ये इसी अंचल में कहीं पहुंचे होंगे, आते थे वहां से आते बीच में, उनके जो पालंकी ढोने वाले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो इनको एक पालंकी ढोने वाला कोई नया व्यक्ति का आवश्यकता पड़ा, तो इसलिए वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई पालंकी ढोने के लिए और कोई मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के चारों साइड में ढूंढ रहे थे। अरे जड़भरत है, जड़भरत के चरित्र आप जानते हो है, ये पहले कौन थे, अयंग भरत नामनी राजा, ये पहले महाराज भरत थे, भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जिन्होंने ये पृथ्वी को कई हजार साल तक शासन करने के बाद वैराग्य प्राप्त करने के कारण उन्होंने संसार को छोड़कर चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन आप पहले सुने उनकी कहानी, बाद में उन्होंने हिरण के प्रति आसक्त हो गए और दोबारा जन्म क्या मिला, हिरण का जन्म, और दोबारा फिर तीसरी बार इन्होंने किस रूप में आए, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन जन्म से ही ऐसे ही घूंगे बेहरा जैसे कार्य करते थे, ये घूंगे नहीं थे कि बेहरा नहीं थे, लेकिन ऐसे आचरण करते थे हैं, घूंगा और बेहरा की तरफ कार्य, किसी कुछ बोलते नहीं थे, बा कोई कुछ बोलता जैसे नहीं सुने ऐसा ही, कोई कुछ इसको भौतिक चीज बोलता था उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वस्तुतः एक महान संत हैं थे, क्योंकि जानते भयभीत रहते थे कि मैं कैसे फिर माया में फंस न जाऊं, भगवान की बहिरंग शक्ति की द्वारा आकर्षित होकर फिर माया में न फंस जाऊं, इसलिए उन्होंने ग्राम्य वार्ता नहीं करते, कहते थे कि ग्राम्य वार्ता नहीं सुनते थे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम लवे, ये जो महाप्रभु के निर्देशन है पूरे पूरे पालन करते थे, कभी कुछ फालतू बात नहीं करते, ना फालतू बात सुनते थे हैं, ना असत्संग करते थे, सदा सदा अपने भगवान के दिव्य चिंतन में रहते थे। तो इनको ऐसी स्थिति में देखें, ये उन्होंने भाई भाई लोग ने इनको क्या सेवा दिया था, खेती को जगने के लिए लगा दिए थे इनको है। कहेंगे एक चौकीदार क्यों रखेंगे बेकार, ये इसको ही रख देते बस यही अपना काम करेगा, और जो खाने ये अन्य भाई लोग जो खा पी के जो कुछ बचता था सारे झूठन को इकट्ठी करके उसको भेज देते उनके पास खाने के लिए हैं, इसमें कोई चिंता नहीं था, उसी को खाकर वो रहते थे। लेकिन जिसकी मन में कोई दुश्चिंता नहीं रहता है तो उसके बॉडी अपने आप उसका शरीर अपने आप तगड़ा बनता है हैं। इसलिए क्या कहते हैं बंगाल में कहावत है ना, लूणो खाए हांडी, नमक जो रखता है किसी बर्तन में रखोगे मिट्टी के बर्तन में नमक रखोगे आस्ते आस्ते बर्तन क्या होगा इसको नमक खा जाता है। और यदि आपके मन में कोई दुश्चिंता है चिंता खाए गंडी, गंडी का अर्थात शरीर है, आपके मन में यदि कई प्रकार की चिंतन होगा बहुत दुश्चिंता रहेगा आपका शरीर सुस्त सबल नहीं रहेगा या अच्छा से आपको पुष्ट शरीर प्रकृति में हृष्ट पुष्ट नहीं बन सकता। जिसके मन में दुश्चिंता रहता है वो कितनी खाने पर भी कुछ करने पर भी वो शरीर सदा रुग्ण रहता है, लेकिन जड़ भरत के शरीर सुस्त सबलता है, कोई चिंता नहीं था है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा थे है। सदा ब्रह्मभूत स्थिति पर रहते थे, प्रसन्न चित्त में रहते थे है। तो ऐसे ये ढूंढते ढूंढते एक कहार आ रहे पानी के ढोने वाला ढूंढते थे ये लोग, जो जो मुख्य कहार था वो ढूंढते थे, इसी व्यक्ति को दिखा रहे ये व्यक्ति तो बहुत तगड़ा है खा पीका है, एकांत में अकेले को देख कर इनको पकड़ लिया, बोले कि चलो पाली के ढोना है। लेकिन अवश्य जड़ भरत ब्राह्मण घर में होने के कारण वो जेने उठा लेते उनके कंध में जेने वो है था कि नहीं था, ब्राह्मण घर के थे तो उनको अवश्य तो वो भी तो संस्कार हुआ होगा और जने होगा, लेकिन फिर भी ये लोग ने इसको ध्यान नहीं दिया इतने की जो इमरजेंसी था कि पाली की ढोने वाला एक व्यक्ति चाहिए, ये इनको प्रतिवाद करने ये प्रतिवाद करते नहीं थे किसी के जो बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको पकड़ के लेके गए ये लोग, लेकिन चलो अब पाली की ढोने के लिए लगा दिया तो बोले ठीक है पाली की ढोना शुरू कर दिए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि एक शूद्र ये जो पानी की ढोने का काम किसका काम है, शूद्र का परिचर्यात्मक क्रिया ये किसका काम है, शूद्र का। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का कर्म कुछ कहा गया, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह है, ये सब ब्राह्मण का कर्म है। भगवान कहते कि सम दम तप शौच ख्यांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम है, इंद्रिय की संयमता मन की संयमता है, सम दम तप तपस्या करना पवित्र रहना, ब्राह्मणों को कम से कम तीन बार स्नान करना है दिन में, गायत्री तीन बार जपेगा, सम दम तप शौच बाह्य रूप से अंतकरण से भी शुद्ध रहता, क्योंकि अंतकरण बाह्य रूप से तीन बार स्नान करेगा, अंतकरण में सदा भगवान के नाम जपा करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण इस प्रकार अंतकरण को और बाह्य को भी शुद्ध शुचि संपन्न रहता है। तप शौच ख्यांति, ख्यांति का अर्थ सहनशीलता, टॉलरेंस, ब्राह्मण सहनशील होता है। आर्जव, ख्यांतिर आर्जव, आर्जव का अर्थ शांति प्रियता, शांति, ख्यांतिर आर्जव से ज्ञान विज्ञान, इसको शास्त्र भी पढ़ता है, पठन पाठन शास्त्र पढ़ता, शास्त्र की ज्ञान उसके पास होता है, और विज्ञान का अर्थ है इसको जीवन में उतारता भी है, यानी कि जो शास्त्र में पढ़ा वो शास्त्र में ही रह गया, जो थियोरेटिकली पढ़ता है और प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारता उसको विप्र कहते, जो उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारता उसको ब्राह्मण कहते। विप्र और ब्राह्मण में फर्क है, ये कहते कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे दीजे उच्चते, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसलिए लेकिन ये ब्राह्मण थे, ये केवल गुण से बा इनके जो बाह्य रूप से अंतकरण से इनके आचरण के आधार पर ये ब्राह्मण थे। कौन? जड़हरत। लेकिन फिर भी इनको पालकी ढोने में लगा दिए तो क्या करेंगे? ब्राह्मण का कर्तव्य है बाप। ये केवल ब्राह्मण नहीं थे, प्रभुपाद जी के ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण का गुण होने के साथ साथ ये वैष्णव भी थे, महान भक्त थे भगवान की। इसलिए वैष्णव का धर्म क्या है? ब्राह्मण के धर्म के तो कहा, फिर वैष्णव का धर्म क्या? जो ब्राह्मण जो वैष्णव होता है ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण भी, ब्राह्मण का गुण तो इसके चरित्र में रहता है। इसकी अला फिर भी वैष्णव के पास में और भी कुछ गुण होता है, अधिक रहता है। क्या गुण है? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यह होते धर्म आर नाही सनातन। महाप्रभु ने कहा कि सनातन वैष्णव के लिए क्या धर्म है? नाम में रुचि होना चाहिए, सदा हरे कृष्ण मंत्र की जपा करते रहता है, नाम में रुचि और जीवे दया, जीवों के प्रति दया की भावना होना जरूरी है। पर दुखे दुखी, वैष्णव जो होते हैं सदा पर दुख में दुखी रहते हैं। ये केवल अपने हित साधन के लिए सदा प्रचेष्टा नहीं करते हैं, ये सारे जगत के कल्याण की चिंतन करते हैं, सभी के कल्याण चिंतन में रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद थे वासुदेव दत्त, उन्होंने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि इनको कुछ वर मांगने के लिए, क्या मांगे? हैं 84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्माएं हैं, भिन्न भिन्न शरीर में रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग रहे हैं, हे महाप्रभु आप यदि मुझे किसी वरदान देना चाहते हैं, ये समस्त जीवों को आप जन्म मृत्यु संसार से मुक्त कर दीजिए, इनकी जितनी भी प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट बीज आदि जितनी भी पाप है ये समस्त पाप मुझे दे दीजिए, और मैं आप प्रलय ये नरक में रहकर इनकी कर्म को भोगना चाहता हूं, लेकिन आप कृपा करके ये सभी को जन्म मृत्यु संसार से मुक्त कर दीजिए। हैं ये वैष्णव की भावधारा है। और दूसरों को देखिए दुख देख, दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी रहता है, सभी के कल्याण चिंतन करता है। इसलिए महाराज ने जड़ भरत इस प्रकार महान वैष्णव थे। इसलिए जीव मात्र में वो भगवान के अधिष्ठान को जानते, सभी के शरीर में कौन अधिष्ठान हो? भगवान स्वयं विष्णु के अधिष्ठान जानते हुए किसी भी जीवों के प्रति घृणा नहीं करते थे, भाई किसी जीव की किसी प्रकार के अनिष्ट करना उनके स्वभाव नहीं था, सदा सभी की कल्याण चिंतन करते थे। इसलिए उनको जो पालकी ढोने में लगा दिए, वो देख रहे थे रास्ता को 3 फुट पहले आगे तक रास्ता को पहले देखते थे। क्या देखते थे? क्यों देखते थे? तो ऐसे ही तो शरीर का जो वजन, फिर पालकी ढोने से और वजन बन गया। और यदि किसी कहीं चिट्ठी चलता होगा, किसी कीड़े मकोड़े चिट्ठी, विशेष रूप में यहाँ चिट्ठी के नाम उल्लेख, चिट्ठी चलता होगा पैर इसका पर रह गया तो क्या होगा चिट्ठी का? बेचारा मृत्यु, इसका मृत्यु हो जाएगा। उसके लिए ये स्वयं कारण बनेंगे। प्रत्येक जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर की प्रकृति के नियम के आधार पर कुछ दिन तक ये रहेगा। कितना दिन ये शरीर रहना है संसार में वो निर्धारित की गई है, उसकी अपूर्व प्रारब्ध के आधार पर निर्धारित कर दिया गया कि शरीर में व्यक्ति इतना दिन रहने वाला है। और यदि वो तो उसका परमायु समाप्त न होने के पहले किसी कोई स्वयं सुइसाइड कर लेता, बा इसको कोई दूसरे कोई जीव बलात्कार से इसको मार डालता है, हाँ तो फिर वो पापी बनता है, उसका पाप का प्रतिक्रिया उसको भोगना पड़ता है। इसलिए जड़ भरत नहीं चाहते कि जीव मात्र किसी को भी कष्ट देना, साधु के स्वभाव है दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देना। यदि जैसे एक मुर्गारी था तो बहुत हिंसक था, तो शूद्र था, लेकिन वो तो पशुओं को आधा मार के भी छोड़ देता था। लेकिन जब नारद जी के संग में जब वो भक्त बना, उसका स्वभाव कैसे बन गया? महान संत, पहले कोई कितने दुष्ट दुराचारी क्यों न हो, जी वैष्णव की संगति में आकर वो संत बन जाता है तो फिर संतों के स्वभाव उसके चरित्र में देखता है। जैसे आप मुर्गारी की कथा सुने, पहले जीवों को अधा मरा होकर तड़पते हुए देखकर बड़ा आनंद आता था इसको, लेकिन बाद में जब भक्त बन गया नारद जी के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, कृपा से, बाद में कई साल के बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को साथ में लेकर आके देख रहे थे कि मेरे शिष्य कैसा अभी चल रहा देखता हूं, तो अपने गुरु को दूर में देखकर तुरंत वो क्या करता था, प्रणाम करना तो चाहता था, तुरंत देखता कि जमीन में कितनी चिट्टी चल रहे हैं, इसलिए तुरंत प्रणाम नहीं कर पाता, तुरंत तो आस्ते आस्ते अपने उत्तरी लेकर सब पहले चिट्ठी को आस्ते आस्ते भागा रहा था, साइड करके फिर प्रणाम करना चाहता था। नारद जी देख कर आश्चर्य हो गए हैं पर्वतमणि को, पर्वतमणि कहे कि यही तो आपका ये आपका मैंने संघ का प्रभाव है, बड़े वैष्णव पारसमणि के समान होते हैं, किसको स्पर्श करके उसको भी ऐसे ही सोना बना देते हैं, लोहा को भी सोना बनाता है पारसमणि जैसे। इसी प्रकार जब वैष्णव बन गया तो मुर्गारी भी नहीं चाहता था कि एक किसको एक चिट्ठी को मारने के लिए, इसलिए महाराज भरत जो कि जड़ भरत के रूप में अभी भूमिका निभा रहे थे, तो इन्होंने नहीं चाहते थे किसी चिट्ठी का मृत्यु का कारण वो स्वयं बन जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सतर्क साथ देखते थे कि उनके पैर किसी चिट्ठी के ऊपर न पड़ जाए। ये कोई जानबूझकर राजा को तकलीफ देने के लिए ऐसा नहीं करते थे कि पैर, लेकिन चिट्ठी को नहीं मारना चाहते, इसलिए कहीं चिट्ठी देखते तो खड़े हो जाते थे, आगे जो चलने वाला जो दूसरा उनके साथ में थे वो आगे बढ़ जाते, तो फिर क्या होता, बार बार वो पालंकी हिलना डुलना चाहता था, हिलता था डुलता था कभी आगे पीछे है, तो राजा बड़ा नाराज हो गए, बोले कि ये क्या चल रहा है, तुम लोग मुझे थोड़ा ठीक से पालंकी लेकर चलो, ये ऐसे क्यों चल रहा। तभी फिर वो दूसरे जो राजा ने पहले कहा, बाद में फिर धमकी भी दिया कि ठीक से नहीं चलोगे दंडित किया जाएगा, तभी भयभीत हो गए से, बोले क्या, अरे राजा तो दंडित कर, राजा के पास में राजदंड है, दंड देने का अधिकार है, तो इसलिए सो भयभीत होकर, ये तो भयभीत नहीं थे जड़भरत, भयभीत नहीं थे वो, और जो तीनों जो कहार थे जो कि ढो रहे थे पालिखी, राजदंड की भय से उन्होंने तुरंत ही अपने बात को बताए, किसको, इसी श्लोक में उसी को कहा, उसी को कहा जा रहा, ते कहार लोक ने सभी एकत्रित होकर राजा को बताए न वयं नरदेव प्रमत्ता, नरदेव राजा को क्या कर उप संबोधित करते हैं, नरदेव मनुष्य में देवता माने जाते हैं, भगवान गीता में कहते कि नारायणांच नराधिपम, मैं मनुष्य में कौन हूं, नृपति हूं, राजा हूं, तो इसलिए नरदेव नर शरीर में मनुष्य शरीर में होते हुए भी उनको देवता के समान सम्मान की जाती है, तो इसलिए वो कहते कि हे नरदेव हे मनुष्य में है, जो देवताओं के समान सम्मान प्राप्त करने वाले हे राजा, राजा के भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है राजा को, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि इनको देव कहा गया, नरदेव, हे नरदेव हे राजन हम पागल नहीं है, ये पागल ये व्यक्ति है कौन, ये जो नया नया जो आया है, हम पागल नहीं, प्रमत्त का पागल, हम पागल नहीं, ये यही व्यक्ति पागल है, ये जो नया व्यक्ति आया ये ठीक से पालिका को नहीं ढो रहा है, कोई भी पता नहीं खड़ा हो जाता, चलते चलते खड़ा हो जाता, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते खड़ा हो जाता, तो इसलिए आगे एक साइड आगे चला जाता, एक साइड पीछे रह जाता, कभी हिलता डुलता है पालिकी, तो इसलिए हे राजन कि ये असावधान रहता, प्रमत्ता ये कार्य के प्रति असावधान रहता है, कौन ये नया जो आता, प्रमत्त का अर्थ ऐसे ही तो साधना, प्रमत्त का अर्थ कहते कि पागल, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते प्रमत्त का अर्थ है कार्य के प्रति असावधानी रहना, इसकी पागल, ये भी पागल का काम है, जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं संपादन करता है, तो इसलिए हम तो भवत नियम अनुपथा, हम तो आपकी नियम को ठीक ठीक से पालन कर रहे हैं, भवत अर्थात हम पालन कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति पालन नहीं कर रहा, कौन है न, अभी जो जो जब जो अभी नया नया आया है जो व्यक्ति, अयम यह मनुष्य जो नया अधुना, अयम अधुना जो अभी अभी नया मनुष्य आया है जिसको हम पानी के ढोने में लगाए, ये ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए ये समस्या हो रहा कि हम तो आपकी इच्छा अनुसार निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति इसी हाल ही में जो जिसको काम में लगाया गया है ये तेजी से नहीं चल रहा है, कभी कभी खड़ा भी हो जाता है, हैं किस लिए खड़ा हो जाते थे जड़ भरत, सामने चिट्ठी को देख कर हैं खड़े हो जाते, ये खड़ा हो जाता है, इसीलिए उसके साथ में पाली की ढोना नाने व सह बोढ़ुम अह वयं पारयामी, हम इसी व्यक्ति के साथ में पाली को ढोना संभव नहीं है, नहीं पाया है, नहीं ढो पाएंगे, इसका आचरण गतिविधि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कभी खड़ा चलते चलते खड़ा हो जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये ब्राह्मण को शूद्र की शूद्रों के बीच में काम करना संभव नहीं है, है? व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, है? प्रकृति प्रकृति के आधार पर कार्य करता है। ये जो शूद्र है वो पशुओं को काट के खाना व किसी जीव को हत्या करना उसके लिए मामूली बात है, है? शूद्र का काम है क्या करना, मांस खाना, मछली खाना, कोई की, कोई जीव ऐसे मर गया तो उसको कुछ इतना कोई कष्ट नहीं होता है, हैं? शूद्र इसलिए नीचे कोटि की माने जाते हैं समाज में, हैं? इनके काम है झूठ कहना, धोखा देना। शूद्रों को इसलिए सदा परिचर्यात्मक क्रिया में लगाना चाहिए, फिजिकल लेबर में, दूसरा तीनों वर्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ब्राह्मण क्षेत्रीय और वैश्यों की सेवा में। इसको जो कठिन काम है इसको लगाना चाहिए, सब समय कार्य में लगाना, काम में नहीं लगा हुए तो ये समाज के कलंक बन जाएंगे। यदि थोड़ा सा इनको कुछ लीजर टाइम मिल जाएगा ये दूसरे की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, धोबी जैसा रामचंद्र जी को भी छोड़ा नहीं है, ये सब होते ना नाई धोबी और जितने सब नीच मान जो परिज्ञा जो समाज की सेवा करते हैं, तो ये लोग का स्वभाव ऐसे बना हुआ है। इनको यदि थोड़ा सा कोई काम मिल जाएगा भगवान की भजन तो नहीं करेंगे और क्या करेंगे, प्रजल पर करेंगे, प्रजल पर करना शूद्र का काम है, है? तो इसलिए हम समझना चाहिए कि अभी हम शूद्र है कि और ऊपर को उठे, है? कलौ शूद्र संभव हुआ पद्म पुराण कहते कलि युग में सारे शूद्र जन्म से ही शूद्र है, क्योंकि जन्म से ही स्वभाव बना हुआ है, है? प्रजल पर करना दूसरे के दुख देखकर सुखी बनना है, पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी, किसका स्वभाव है, ये शूद्र का स्वभाव है, है? इसलिए तुरंत ही स्वयं को बचाने के लिए तो उसका बदगुण को बोलने लगे पालेंगे ढोने वाले हैं, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं, हमारा दोष यही जो नया नया आया इसी के सारे दोष है, इसी को दंड देना चाहिए हमको नहीं, है? तो इसलिए शूद्र जो होते हैं इनके स्वभाव है झूठ बोलना, मिस झूठ कहना, है? इसलिए अल्पायुष भी प्रायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन जुगे जना मंदसु मंदमतयो मंद भाग्य उपादृता, ये स्वभाव है शूद्रों की, अल्प अल्पायु रहना और झूठ बोलना, धोखा देना, है? मिस्टेक करना सभी कार्य में, ये सब शूद्र का गुण है। और ब्राह्मण जो होते ठीक इसके विपरीत है, है? ब्राह्मण सद्गुण संपन्न होता है, है? उसके चरित्र जैसे अभी ब्राह्मण का गुण हम कहे, अब वैष्णव के 26 गुण तो बता गया, लेकिन 26 गुण से सबसे महान गुण है कि कृष्ण ही का शरणम, सदा कृष्ण के शरण में रहना, ये है वैष्णव का सबसे प्रधान गुण है। ये वैष्णव सदा भगवान के शरण में रहता है, वो दूसरे किसको डरता नहीं है, जो कृष्ण के शरण में रहता तो दूसरे को क्यों भय करेगा। जड़ भरत सदा कृष्ण के शरण में थे, कृष्ण ही के शरण में, भले आप पढ़े होंगे भाई वो काली के पास भी ले जाएंगे तो भी उनको कोई चिंता नहीं है, बलि देने के लिए लोग पकड़ के भी ले गए इनको, शूद्र लोग, यही शूद्र लोग भी सब समय प्रॉब्लम करते हैं समाज में, शूद्र ही सदा प्रॉब्लम करते किसको, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को सताते हैं, है? ये शूद्रों के काम है, शूद्र जो होते ब्राह्मण वैष्णव को सताते हैं, है? कि ब्राह्मण बेचारा अपने स्वभाव कार्य करना चाहेगा और ये फिर उल्टा काम करेंगे, है? ब्राह्मण यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा, विशेष रूप में कलि युग में ब्राह्मण कौन सा यज्ञ करता है, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, है? ब्राह्मण सदा हरिनाम कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुभाष ठाकुर के घर में कीर्तन चलता था रात को रात भर, तो ये चपल गोपाल था, चपल गोपाल था, वो क्या किया लेके उनको बदनाम करने के लिए उनके घर के सामने सब मीट सब मांस मदिरा और सब गंदे चीज सब लेके रख दिया है, कहने के लिए देखो ये शूद्रों की काम है, शूद्रों की काम है सदा वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव की कमी कुछ देखना, उनकी समालोचना करना, ये काम है, है? इसलिए ब्राह्मण के समय ये शूद्रों के समाज में एक ब्राह्मण रहकर कार्य करना बड़ा कठिन हो जाता है उसको, है? कि वो अपने स्वभाव से कार्य करेगा ना, ब्राह्मण कहीं रहेगा बेचारा वो क्लीन रहेगा अंतकरण से बाह्य रूप से इंद्रिय संयम सब कुछ करेगा, लेकिन ये शूद्र जो रहेंगे वो जहां भी रहेंगे गंदे रहेंगे, गंदा चीज खाएंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, और सभी प्रकार के दूसरे के दुष्ट दुर्गुण को देखना, है? इन संक्षेप में जो ब्राह्मण व वैष्णव होते हैं वो मधुमक्खी की तरफ होते हैं, और जो शूद्र होता कैसे होता है, मक्खी की तरफ है। गंदगी में बैठेगा वो, जहां गंदगी वही आपको अच्छा लगेगा बैठने में। सुअर और गाय में जैसे फर्क है, गाय और सुअर में क्या फर्क, सदा सत्व गुण में रहता है कौन, गाय है। इसलिए गाय जब शरीर त्यागता है ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, वो ब्राह्मण बनता है, मनुष्य जन्म है। सुअर क्या कैसे क्या करता, गंदगी में पड़ा रहता है, गंदगी में पड़ा रहेगा वैसे आत्म। लेकिन ऐसे ही सुअर और गाय के जैसे स्वभाव है, शूद्र और ब्राह्मण के ऐसे ही स्वभाव है। गाय देखो कितने शांत रहता है, है? कुछ गंदे जगह में रहता है तो अपने क्लीन जगह में रहता है, इसके यहाँ तक कि उसका मलमूत्र भी पवित्र होता है, है? सब कुछ। चलिए तो संत जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो तो महापवित्र रहते सदा, क्योंकि सदा कृष्ण के नाम वो चिंतन करते हैं। कृष्ण नाम ने नाम गाने सदा रुचि होने के कारण ये सदा पवित्र रहते हैं। इसलिए समाज में शूद्र को के साथ ब्राह्मण को यदि दे दिया एक साथ में रहने के लिए, वो क्या करेगा, दोनों का स्वभाव अलग है, है? विपरीत स्वभाव होता है। तो इसलिए शूद्रों के बीच में तीन शूद्र थे पानी के ढो रहे थे, उसमें बीच में एक ब्राह्मण, ब्राह्मण का कर्म भी नहीं है पानी की ढोना, है? पानी की ढोना ब्राह्मण का काम नहीं है। कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि राजा बना दिया जाए, शूद्र को यदि बैठा दिया जाए सकता क्या राज सिंहासन में, वो भी कभी कभी ऐसा ही आचरण करता है, है? एक नहुष, महाराज नहुष की कथा सुने, बड़े प्रतापी राजा बने। तो राज जब जो स्वर्ग में कुछ दिन के लिए इंद्र को अभिशाप मिल गया और वहां की वो स्वर्ग से गिर गया, तो स्वर्ग में इंद्रपद को संभालने के लिए इसको थोड़ा अपॉइंट कर दिए, बोले ये बहुत अच्छा राजा पृथ्वी को चलाता है, टेम्पोरारी इंद्र की पद पर बैठा दिए। किसको, नहुष को। नहुष बैठ गया पद में, इंद्र की पद पर, कहा कि इंद्र की रानी कौन है, सची है, सची को मैं भोग करना चाहता हूँ, चलो मुझे लेके चलो उसके रानी के पास। कौन लेके जाएगा, सप्त ऋषि को लगा दिया है, जो सात ऋषि थे उनमें से एक दुर्वासा भी थे, बोला पालकी मुझे आप लोग ढो के लेके जाओ है। ब्राह्मण को लगा दिया वहां पाली की ढोने में, और राजा खेत्र है वो बैठा पालकी में, और पाली की ढोने में किसको लगा दिया, ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो कुछ प्रतिवाद करे, चलो राज आदेश है चले, लेकिन इतने मने उसको बहुत इमरजेंसी, बहुत जल्दी पहुंचना था, इतनी लस्टी डिजायर उसके मन में आ गया था, बहुत जल्दी पहुंचना था सचिन के पास। आज जल्दी नहीं हो रहा था, उसका पैर ऐसे ही थोड़ा गर्म हो रहा था, तो पैर लग गया किसका ऊपर, दुर्वासा के ऊपर। दुर्वासा घूमे की भरे के, मूर्ख है सर्प भावा सांप बन जा, बस हो गया काम। अभी इंद्र बन के बैठा था, अभी क्या बन गया, सांप। कभी कभी ब्राह्मण ऐसे मने कभी शूद्रों के जो अयोग्य व्यक्ति को किसी पोजीशन में देने से उसके हालत ऐसे ही होता है। लेकिन यहां पर ये तो नव तीन शूद्र थे वो पाली के ढो रहे थे, हैं? लेकिन इसके बीच में एक ब्राह्मण को लगा था, ब्राह्मण तो अपने स्वभाव से कार्य करेगा ना, वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचे, चिटियों को नहीं मारना चाहते थे, हैं? उनकी पर पैर को नहीं रखना चाहते थे, हैं? जड़ भरत जी, इसलिए सारा समाज है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक समाज में ब्राह्मण के समाज में ब्राह्मण ही रहकर अपने ब्राह्मण धर्म को ठीक से पालन कर पाएगा, क्षेत्रीय समाज में क्षेत्रीय ब्राह्मण को रहेगा तो वो अपने ब्राह्मण धर्म को ठीक से आचरण करेगा, ब्राह्मण के बीच में रहना उसके लिए उसको पसंद है। अब ब्राह्मण को लेकिन शूद्रों के बीच में छोड़ दोगे तो वो परेशान होगा बेचारा, है उसके स्वभाव इनके स्वभाव मेलजोल नहीं खाएगा। क्षेत्रीय भी छोड़ दोगे तो क्षेत्रीय का धर्म फेर करेगा, सौर्य तेज और ध्रुति राख के वो अपना तेज दिखाएगा, अब ब्राह्मण बेचारा तो नम्र रहेगा, है? तो इसलिए समाज में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कन को मैं स्थापना किया, इसकी एक उद्देश्य भी ये है कि कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना है। ब्राह्मण जो होते समाज के मस्तिष्क होते हैं, ये समाज को परिचालन करते, बुद्धि उनसे आता है, राजा केवल बाहु होता है। अब मस्तिष्क कौन है, ब्राह्मण। अब पेट है कौन, वैश्य। कृषि गोरख्या वाणिज्य करके खाना समाज का खाद्य उत्पादन करेगा। शूद्र का काम क्या है, चलना, इधर करना, बने कार्य करना, शरीर को रक्षा करना, जैसे फिजिकल लेबर करना है। शूद्र को सदा फिजिकल काम में लगाना, नहीं तो वो उत्पात करेगा समाज में, है? इसको एक सेकंड भी टाइम नहीं देना, क्योंकि इससे पढ़ाई कुछ नहीं होगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा ना, कुछ चिंतन करेगा ना कुछ करेगा, इसको सदा फिजिकल काम में लगाना, इसे लगने से उसके कल्याण होगा, है? तो कि नहीं तो वो प्रजलप करेगा, सारा समाज की हानि करेगा है। या धोबी जैसा रामचंद्र जी का भी समालोचना करना शुरू कर दिया, बाद में फिर कंस के मैंने कृष्ण लीला में भी आया धोबी बनकर, कंस का धोबी है। फिर भी भगवान गए तो मांगे कि थोड़ा क्लोक कपड़ा दे दो, बोला नहीं इतना ही, मतलब भगवान गाड़ी देने लगा, एक पा हाथ में लगाया एक पा बस खत्म। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये समाज में कि ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मण, ब्राह्मण वैष्णव है, वैष्णव के समाज वैष्णव, आज यदि इनमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर बड़ा बहुत समाज में परिचय, समाज को ठीक से चलाना बहुत कठिन है। यदि वो समाज में चार वर्ण चार आश्रम की व्यक्ति रहना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं शूद्र को राजा बनाओगे तो क्षत्रिय की सेवा में लगाओगे तो क्या करेगा, अभी हालत यही हो रहा है, हाँ? जो राजा बनते हैं शूद्र को राजा बनाए नहीं क्या करेगा वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे, एक बार मिनिस्टर बन गया तो पूरा दिन दे पीढ़ी की पीढ़ी तक सब संचय करके रखेगा जवान है, ये क्षत्रिय का काम नहीं है। क्षत्रिय राजा जो होता है वो सारे प्रजाओं की पालन करेगा, वो कोई संचय नहीं करेगा है। लेकिन शूद्र को राजा बनाओगे तो फिर शूद्र का गुण करेगा, राजा की सीट पर बैठेगा लेकिन शूद्र के काम करेगा है, जितने संभव इतनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो चाहेगा है। तो इसलिए एक समाज में जब ये ब्राह्मणों की वैष्णव की बुद्धि होते रहेगा तो समाज का कल्याण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसकन में ये एक लक्ष्य है कि इसलिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, हैं? पहले आप हरिनाम लेकर थोड़ा शुद्ध हो गए, सब तो जन्म से शुद्ध है लेकिन जब हरिनाम का आप जपा करेंगे आस्ते आस्ते हमें चेतना शुद्ध होगा, फिर आस्ते आस्ते इनको ब्राह्मण के गुण है को बढ़ाने के लिए, फिर आस्ते सौजन्य के सम दम तपस्व ये गुण को बढ़ाने के लिए फिर इनको ब्राह्मण देखकर इनके चरित्र में इनको सेकेंड इनिशिएशन दी जाती है, अर्थात वो ऑलरेडी सेकेंड इनिशिएशन ब्राह्मण बनने के लिए योग्य बन गए तो भी ब्राह्मण दिया जा रहा है, ब्राह्मण दीक्षा है। क्योंकि जब वैष्णव बन रहे हरिनाम जपा करना प्रारंभ किए तो आस्ते आस्ते ब्राह्मण के गुण के चरित्र में दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये ठीक समावेश सही नहीं था, इसमें तीन शूद्र थे और एक ब्राह्मण था, और इनको पानी के ढोने में समस्या था, तो चारों ब्राह्मण यदि होते वो भी ठीक था, लेकिन ये कार्य उनका नहीं है, जिस कार्य जिसका नहीं है उसको ये कार्य में लगाने से वो कैसे करेगा, ब्राह्मण को लगाओ ब्राह्मण के कर्म में, समय पठन पाठन जजन जान जाजन दान प्रतिग्रह वो ये कार्य करेगा ठीक पारंगम है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ण आश्रम की उनकी जो स्पिरिचुअल मास्टर बड़े दक्ष होते हैं और अपने शिष्य की स्वभाव को देखकर उनको ऐसे ही कार्य में लगाते हैं, वो पूरा वो भी खुश रहता है, समाज में भी कल्याण होता है, सब कुछ ठीक चलता है। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष और दिन है, क्या दिन है, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर बा राधा श्याम सुंदर के आज नौका विहार। नौका विहार कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, जमुना में, और यहाँ जमुना में पानी बहता थोड़ी है, ये तो एक कुंड बनाकर पानी भरा आ गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को यदि हम गोस्वामी ग्रंथों से देखेंगे, नौका विहार मुख्य रूप में दो जगह पर कहा गया, एक तो जमुना में और दूसरा मानसी गंगा में है, मानसी गंगा स्थिर रहता है। तो इसलिए यहाँ की जो नौका विहार है तलाव में जैसे होता है, अर्थात हम को मानसी गंगा की तरफ देख सकते हैं, हम को नहीं देख सकते जमुना पर, स्रोत नहीं तो चलता नहीं। आप कहोगे आजकल तो जमुना में, आजकल जमुना में ऐसे तो पानी तो थोड़ा थोड़ा चलता है, नहीं तो ऐसा ही प्राय है, लेकिन फिर भी नौका विहार मुख्यतः भगवान श्री 5000 साल पहले जो भगवान की लीलाओं में, नौका विहार की लीला में साधारण गोपियाँ और कृष्ण के बीच में जो नौका बाद दोनों एक साथ जो नौका में बैठकर विहार करते थे, राधा कृष्ण को घिर कर सारे गोपियाँ, नौका विहार में कोई गोप बालकों की कोई भूमिका नहीं है, इसमें गोप बालक लोग ने नौका विहार में भाग नहीं लेते थे है? ये माधुरी जी लीला की है, जो भगवान की माधुरी जी भक्तों के बीच में है, विशेष रूप में गोपियाँ और कृष्ण के बीच में नौका विहार, इसमें आनंद होता है। तो इसलिए आप सोचो कि ये नौका विहार कहाँ पर हो रहा है, मानसी गंगा में हो रहा है, आप मानस में देखना नौका विहार कहाँ चलते, श्याम राधा श्याम सुंदर 5 बजे अपने अल्टर से आएंगे और नौका में बैठेंगे, छोटा नौका है, आप यदि हमारे राधा माधव को लाएंगे नौका में बैठा हो जो है फिर ये नौका डूब जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे विग्रहों की जैसे राधा श्याम सुंदर के अच्छा विग्रह हम बैठाते हैं। तो ये लीलाओं को विशेष रूप में मानसी गंगा में नौका विहार लीला को भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं नरहरि सरकार ठाकुर है, नरहरि सरकार भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं। श्री राधिका आईले न सखी गण सनी तास बारे आगु सरी कृष्ण आने ए स्थानी मानसी गंगार यही घाटे नौका लैया करान सवारे पार नाबिक हैया श्री राधिका सह यथा अद्भुत विलास ललितादि सखी पूर्ण कैला अभिलास। कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे नौका नाव में मानसी गंगा से पार करते, मानसी गंगा की क्योंकि गोवर्धन तो पर्वत है, आजकल जैसे गोवर्धन से बरसाने को जाओगे तो रोड हो गया बीच में, गोवर्धन के ऊपर भी रास्ता है, ऐसे रास्ता पहले नहीं था, ये तो भी सिर्फ कुछ साल पहले 400 साल पहले जब अंग्रेजों की शासन चलता था उन्होंने ये बनाया है, ब्रिटिश शासन में ये वो गोवर्धन के ऊपर से वो रास्ता बना दिए, नहीं तो पहले गोवर्धन को कोई क्रॉस करने की हिम्मत नहीं था, गोवर्धन के ऊपर नहीं चलते थे लोग, रास्ता नहीं था ऊपर, तो इसको रास्ता बनाया। लेकिन कहते कि वहां पर कितनी गदा रखा हुआ रजाई है, हजार हजार रजाई रखा हुआ गिरिराज के ऊपर रख के फिर उसका पर जाए कि रास्ता बनाने में बहुत मुश्किल से ब्रजवासी लोग राजी हुआ है। लेकिन उस समय तो गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के साथ समय में बहुत ऊंचा गोवर्धन था, ऐसा वर्णन आता कि 8 माइल गोवर्धन की गिरिराज की उच्चता था, लेकिन अभी तो आस्ते आस्ते कलयुग के प्रभाव से वो घटते जा रहा है, सोरसों की दाना की है, एक सोरसों की दाना की तरफ प्रत्येक दिन नीचे नीचे घटता है, तो इसलिए लेकिन इसलिए गोवर्धन बरसाने की तरफ से आते थे, गोपियां कहां से आते थे, बरसान से आते थे और गोवर्धन मार्केट की तरफ, गोवर्धन क्रॉस करके फिर मथुरा में जाएंगे, आप गोवर्धन में कुछ बेचेंगे उससे और जो रहेगा गोवर्धन फिर मथुरा की तरफ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने आते थे गिरिराज को पार करने के लिए। अब पहाड़ को कैसे पार करेंगे, इसलिए वहां पर मानसी गंगा बहती थी बीच में गोवर्धन, आज भी बह रही है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को साधारणता में कहते कि ये भगवान विष्णु के स्वरूप है, भगवान विष्णु के चरण में जैसे गंगा बहती है ऐसा ही गिरिराज को यदि हम विष्णु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न मानते हैं तो उनके चरण में कौन बहती है, मानसी गंगा, ये गंगा है बहती है। गंगा को भी बहुत दुखी था गंगा की, मेरे बहन का पानी में बहुत भगवान विहार कर रहे हैं जमुना के जल में, लेकिन मेरा हालत ऐसा ही, भगवान मेरे को कोई सेवा में नहीं लगा रहे, इसलिए जो भी है भगवान ने मानसी गंगा को भी सृष्टि किए थे, जो नंद महाराज यशोदा ब्रजवासियों की इच्छा हुई गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना प्लान करते थे, भगवान कहे कि अरे हरिद्वार क्यों जाए, गंगा तो इधर ही है ना, श्री नंद महाराज को और ब्रजवासियों को गंगा में स्नान कराने के लिए मानस से है, मन से ही भगवान ने मानसी गंगा को भी सृष्टि की है। तो मानसी गंगा बीच में कई कहानी है, मानसी गंगा कैसे सृष्टि हुआ, तो इसलिए गोवर्धन के बीच में गोवर्धन के एक साइड से दूसरे साइड आने के लिए ये भी एक सहारा बनते थे, कौन सा, मानसी गंगा। तो बरसाना साइड से आकर गोपियां घाट में पहुंचते थे, मानसी गंगा में पहुंचते वो घाट में पहुंचते थे, और भगवान जानते थे कि गोपियां लोग ने यहाँ पार करेंगे नौका में मानसी गंगा को पार करके इस साइड में आ जाएंगे, गोवर्धन की मार्केट साइड में आएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना सब छुपा कर, अपने जो स्वयं का ड्रेस को छुपा कर, नाविक जैसा ऐसे ड्रेस पहनकर थोड़ा क्या महिला वस्त्र व थोड़ा गंदी कपड़ा पहन के करके पगड़ी बांध के बांसुरी की कहीं छुपा देते हैं, कमर में छुपा कर अंदर में, और एक नाव सबसे जो क्या टूटा मोटा नाव होगा बहुत पुराना नाव को लाकर लगाते थे, लगाकर उसके वहां पर बैठते थे, और नाव के अंदर में नीचे भी छिद्र रहता है, छिद्र को ऐसे कपड़ा में बंद करके सब रखते थे, ऐसे उसको बंद करके, और गोपियां आते थे देखते थे कि कोई नाव नहीं है, एक ही नाव सिर्फ है बंधा हुआ, दूसरे नाव को सब भागा देते कृष्ण सब जाओ यहां से, तो एक ही नाव रहता था, तो गोपियां आकर देखते थे कि एक ही नाव है, हर उसमें थे बुढ़े नाव चलाने वाले बैठा ऐसे ही कर दे ऐसे पड़ा रहा था, किसी से घुस नहीं, गोपियां आकर उठा हिलाते इसको उठाओ उठाते, बोलता वो पार कर हमें दूसरे साइड में जाना है, तो ये बोलते कि देखो मैं बुढ़ा आदमी हूं मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नाव चलाने अक्षम हूं, बोले नाव नहीं चला क्या, नाव बंद कर बैठा इधर, बोले ठीक है चलाऊंगा लेकिन मुझे पहले खिलाओ कुछ, मेरे शरीर में ताकत थोड़ा हो जाएगी, मैं चलाऊंगा कुछ खिला है। गोपियां कहते हैं ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, ये तो हम लेकिन मार्केट में बेचेंगे हैं, और कोई खरीद के लेके भगवान को भूल गए, तुमको पहले कैसे देंगे, नहीं दोगे तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो अब बेचारे परेशान होता तो देखे एक बिना है। तो गोपियां फिर थोड़े बहुत कोई कुछ देता था, खाओ खा लो, खाने के बाद तो फिर थोड़ा उठते बैठते ठीक है बैठ है। फिर नाव में बैठ जाते हैं, नाव पूरा बड़े तुरे इतने पुराना नाव लेके आया, और नाव नहीं है, नहीं हमारे पास तो और नहीं, मेरा तो एक ही नाव है, मैं क्या करूँ है। सो गोपियां बैठते थे नाव में बैठते थे, फिर थोड़ा सा नाव चलाते चला चला कि थोड़ा सा पानी क्या जो बीच में आ जाता है, फिर सो जाते, छोड़ के सो। बोले क्या है क्या है, हैं? बोला जितनी खिलाया था खत्म हो गया, स्ट्रेंथ खत्म हो गया पड़ा है, जितनी खिलाया वो स्ट्रेंथ खत्म है, अभी क्या करूं। बोले खाओ, अब नहीं उठोगे, उठेगा कि नहीं, तुम्हें उठा के सब लोग मिलकर फेंक देंगे पानी में, जानते है उठ। फिर वो उठोगे, फिर थोड़ा उठते, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत देते खाने के लिए, फिर खा के फिर थोड़ा नाव चलाते हैं। आ इसका बीच में जो एकदम बीच में आ जाता है, जानबूझकर पहले तो नाव का बीच में होल है नीचे रखे थे, उसको खोल देते, फिर पानी अंदर से घुसने जाता, पानी भरता है। बोले ये क्या कर रहा है, नाव में पानी भर रहा है। बोले मैं क्या करूं, मेरा पुराना नाव है, नाव में पानी भर रहा है, अभी तुम लोग सब फेंको, जो वजनदार चीज है सब फेंको नाव में है। तुम्हें सो इतने सो सामान लेके आए हो, मुझे खाने भी नहीं दिया, फेंको सब, दही दूध सब अभी पानी में फेंको, ये उज्जवल हो जाएगा, अभी डूब जाओगे, सभी डूब गए, फेंको सब है। फिर वो बेचारे क्या करेंगे, गोपियां को रोड़ दे रहे थे, अरे क्या ये नाव कहां से आया, क्या करेंगे, बाध्यों को सब उठा उठा के अपने क्या दही का पात्र दूध के पात्र सब मिठाई सब फेंकते पानी में, और क्या करें, भले मुझे खिलाया नहीं, पानी में फेंको, नहीं डूबेगा नाव, सब पानी में फेंकना पड़ता। फिर सब पानी डूबाने की बात की, अरे ये तो गया, फिर तो पानी बोझ, ये देखा ना तुम्हारा है, ये जो अलंकार सो लगाया इतना घना लगाया, ये भी बहुत वजनदार है, तुम्हारा शरीर भी बहुत ओजन ओजन, खा पी के इतने तगड़ा हुए, आपका शरीर भी इतनी उज्जवल है, ये गहना को भी सब फेंकना पड़ेगा, निकालो सब, नहीं तो वो डूबेगा अभी बीच में ही है। वहां बड़े अद्भुत ला करते थे, लेकिन ऐसे देखते देखते बोले ये नावड़िया कौन है, ललिता बहुत इंटेलिजेंट है सखियों में से, बोले इतनी इतनी बोलने वाला है कौन है, और देख तक ललिता मार कर रहा है कि ये नावड़िया जो नाव चला रहा है, लेकिन तिरछी नजर में एक कोने में देख रहा है, किसको, राधा को देख रहा है, ये राधा रानी को देख रहा है। तो ललिता जी ने देख के तुरंत ही घूम घाम के देख लिया, अच्छा ये बांसुरी की यहाँ छुपाया है, तो कपड़ा को पकड़ के खींच लिए, खींच लेने से अपना स्वरूप पकड़ा, लेकिन भगवान के निर्देशन में उसी समय जोगमाया देवी ने, नाव तो पूरा डूबने डूब रहा है पूरा, जोगमाया देवी ने पूर्णवासी ने फिर मानसी गंगा का बीच में एक दीप जैसे दिखाई पड़ेगा, अद्भुत दीप है, वो दीप के किनारे जाके नाव पहुंच जाएगा। सो गोपियां फिर सब देखे पवित्र लोग, कृष्ण को भी पता लग गया, कृष्ण को उठा के फिर लेके गोपियां लोगों ने उठा के लेके जाएंगे दीप में, उस दीप में पहले से ही जोगमाया देवी पूर्णमासी और वृंदा ने बहुत सुंदर कुंज की सजावट करके रखते हैं, झूलने के लिए झूलना भी, फिर सभी सखियां राधा श्याम सुंदर को झूलना में बैठा कर फिर इनको क्या करते हैं, झुलाते हैं। हमारे जो मायापुर में बोट फेस्टिवल होता है, वहाँ बोट फेस्टिवल बोर्ड से निकाल कर फिर राधा माधव को झूला में बैठाते हैं, झूला में बैठाकर फिर झूला में कुछ समय इनको झुलाते हैं। हमारे यहाँ का व्यवस्था तो है नहीं है, छोटे जगह है, इसलिए ये नौका विहार लीला मानसी गंगा में होने का वर्णन है। मानसी गंगा में इनको बीच में फिर वो दीप प्रकट होता है, फिर उस पर फिर नाव तो डूब जाता है, फिर नाव से सभी गोपियों को गोपियाँ और कृष्ण फिर दीप में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर वृंदा देवी ने बहुत सुंदर कुंज में राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर झूला भी बना के रखती है, राधा कृष्ण को झूलने में बैठा कर फिर सारे सखियां क्या करते हैं, आनंद उत्सव में सभी लोग आनंद लूटते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण जीवने मरने गति आर नाही मोर। दोता कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बन कालिन मुदंग इसको आता नहीं कोई किसको आता तो दो तब आता किस बजन रतन बेदीर ऊपर बसा बदुजन रतन बेदीर ऊपर बसा बदुजन श्याम गौरी अंगे दीबा चंदनेर गंध श्याम गौरी चामर डुला बकबे हेरी मुख चंद्र चामर डुला बकबे हेरी मुख गांठिया मालतीर माला दीब दुहार गले गांठिया मालतीर माला दीब दुहार अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले अधरे तु ललिता विशाखा दि जत सखी वृंद ललिता विशाखा दि आज्ञा करीब सेवा चरणार बिंद आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण जीवने मरण गति आर नाही मोर जीवने मरण गति हारमोनियम भी रख दिया और मृदंग बजालवाना ही बस है। तो इस प्रकार राधा मानसी गंगा में जो ये मानसी गंगा ही आप समझना आज जो बोट फेस्टिवल देख रहे हैं क्या समझोगे इसको यह मानसी गंगा आज प्रकट हुआ है। मानसी गंगा में राधा श्याम सुंदर के है नौका विहार और लेकिन वहां बीच में दीप कहां दीप है नहीं दीप बनाते थे पहले बनाते थे आजकल नहीं बना रहे हैं बनाया अच्छा वो दीप के फिर जो नौका विहार होगा नौका डूबने वाला होगा फिर डूबने वाले तो फिर दीप में जाएंगे और दीप में पहले पूर्णमासी देवी ने वृंदा देवी की सहायता में बहुत सुंदर कुंज बना के रखती हैं वहाँ झूला भी बना के रखती हैं फिर झूलन में बैठते हैं राधा श्याम सुंदर फिर उनको सब लोग कहा कि क्या करते हैं झूलाते हैं है? तो इस प्रकार ये बोट फेस्टिवल है ये जमुना में लेकिन जमुना की नहीं एक मानसी गंगा का बोट फेस्टिवल है जमुना में बोट फेस्टिवल दूसरे प्रकार की होती है तो उसका वर्णन भी करते हैं गोवर्धन अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं अस्तवावली में गोस्वामी भी लिखते हैं लेकिन वो जमुना की बोट फेस्टिवल इसलिए मैं इसको वर्णन नहीं किया है। जस्या माधव नाभिको रसवती राधा उसको मैं पढ़ने का जरूरत नहीं वो तो जमुना की बोट फेस्टिवल है अभी समय हो चुका है इसलिए प्रसाद, यहीं पर प्रसाद भी होगा शायद सीनियर भक्तों की है, तो यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। और सभी जो जो आज का बोट फेस्टिवल किसकी मनोरंजन के लिए, आपका किसका, राधा कृष्ण की मनोरंजन के लिए है, इसलिए आज जो बोट फेस्टिवल को हम दर्शन करेंगे तो इसी भावना में है, राधा कृष्ण की हाँ सेवा में, जैसे हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमको सहयोग मिलेगा। जो शांतरस की भक्त है वो केवल देख के ही प्रसन्न होते हैं, इनको सेवा की भावना नहीं होता है। शांतरस की भक्त खाली देखते हैं और उससे खुश रहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कैसा हुआ बोट फेस्टिवल, बहुत अच्छा हुआ। ये शांतरस की भक्त है। और जो उन्नत भक्त होते हैं इनके पास दास्य रस से फिर सेवा शुरू होती है, कुछ ना कुछ सेवा की भावना रहता है। मैं भगवान की इतनी बड़ी महोत्सव में मैं कुछ ना कुछ सेवा कर सकूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ मौका देखता है, कुछ ना कुछ मुझे सेवा मिल जाए, हैं कोई माला बना लें या कोई फूल फ्लावर डेकोरेशन में थोड़ा मदद करें, कुछ भी कैसे भी हो, जब सेवा की अभिलाषा हमारे मन में जागृत होता है अवश्य कृष्ण हमको सेवा के अधिकार प्रदान करते हैं। सेवा के अधिकार कृष्ण डायरेक्ट नहीं देते हैं, कौन देता है, सखियां देते हैं, सखियां भी डायरेक्ट नहीं देते, उनकी अंडर में रहने वाले मंजरियां देते हैं, वो मंजरी भी डायरेक्ट नहीं दे, उनकी अंडर में जो हमारा जो टेम्पल की अथॉरिटी है उनकी माध्यम से कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त करने के मौका देखना है। कुछ नहीं है तो कुछ भगवान के लिए खाना बना के तो लाते हैं ना, बहुत लोग माता जी लोग आज बना के लाते हैं, बहुत प्रकार के केक मिठाई भगवान को प्रसन्न खिलाने के लिए भावना लेकर लाएंगे तो भगवान खाते हैं। तो इस प्रकार सभी को किसी ना किसी प्रकार की सेवा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए है, भगवान की सेवा में। ठीक है, भक्ति का अर्थ ही प्रेममयी सेवा, प्रेम से सेवा करना, उसी को भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर नौका विहार महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।